एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र AI की मदद से तैयार किया गया है।
आज की ज्ञान गोष्ठी में हम 20वीं सदी के साहित्य पर कह सकते हैं एक बहुत गहरी छाप छोड़ने वाले एक शख्सियत की बात करने जा रहे हैं।
हाँ,
कवि, नाटककार, आलोचक, और जिनकी कुछ पंक्तियां तो हम आज भी बोलते हैं, T.S. एलियट।
बिल्कुल। T.S. एलियट अमेरिकी मूल के थे, पर बाद में ब्रिटिश नागरिक बन गए और मॉडर्निज्म मतलब आधुनिकतावाद के शायद सबसे बड़े नामों में से एक।
हाँ, और उनका कद कितना बड़ा था ये इसी से पता चलता है कि 1948 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला।
बिल्कुल, नोबेल, और उसी साल ब्रिटेन के किंग जॉर्ज VI ने ऑर्डर ऑफ मेरिट भी दिया।
अच्छा।
और फिर 1964 में अमेरिका ने भी उन्हें प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दिया। तो मतलब दोनों तरफ से सम्मान।
हाँ, ये दिखाता है कि उनका असर कितना, मतलब कितना फैला हुआ था।
सही कहा।
तो आज हम T.S. एलियट संपूर्ण साहित्यिक जीवनी के कुछ हिस्सों को आधार बनाकर उनके जीवन, उनकी सोच, उनकी जो कालजयी रचनाएं हैं,
हाँ,
और आज वो कितने प्रासंगिक हैं ये समझने की कोशिश करेंगे।
बढ़िया, एक बहुत ही दिलचस्प सफर होने वाला है ये।
तो कहाँ से शुरू करें? शायद उस जमाने से, उस माहौल से जिसने एलियट को कह सकते हैं घड़ा।
हाँ, ये जरूरी है समझना। देखिए, एलियट का जन्म हुआ 1888 में अमेरिका के सेंट लुइस, मिसूरी में। ये अमेरिका का गिल्डेड एज कहलाता था, मतलब ऊपर से चमक धमाक इंडस्ट्री बढ़ रही थी, पैसा आ रहा था,
हाँ,
लेकिन अंदर ही अंदर समाज बदल रहा था, एक बेचैनी थी। आप सोचिए, एक तरफ ग्रामोफोन, कोडक कैमरे जैसे नए आविष्कार आ रहे हैं,
अच्छा,
दूसरी तरफ सड़कों पर अभी भी घोड़ा गाड़ियां चल रही हैं। तो एक अजीब सा, मतलब मिक्स माहौल था।
एक विरोधाभास जैसा। और इसी माहौल से निकलकर वो यूरोप पहुंचे जहां मॉडर्निज्म, ये मॉडर्निज्म क्या था असल में? क्या सिर्फ एक लिखने का स्टाइल था?
नहीं, सिर्फ स्टाइल नहीं, ये एक पूरा मूवमेंट था, एक आंदोलन कह लीजिए, कला और साहित्य में। जो पुरानी विक्टोरियन सोच थी ना, उसके खिलाफ एक प्रतिक्रिया थी।
अच्छा।
और फिर आया पहला विश्व युद्ध, 1914 से 18 तक। उसने तो जैसे सब कुछ हिला कर रख दिया।
हाँ, बिल्कुल।
पुरानी मान्यताएं, आदर्श, सब सब बिखर गए। और एक मोहभंग की भावना, डिसइल्यूजनमेंट, वो एलियट की पीढ़ी ने बहुत ज्यादा महसूस की। और पेरिस में जब वो थे, तो उन्होंने बॉदलेयर और लफॉर्ग जैसे फ्रेंच कवियों को पढ़ा।
हाँ, सिंबॉलिस्ट कवि।
हाँ, सिंबलिस्ट, जिन्होंने ये सिखाया कि शहर का अकेलापन, अंदर की टूट फूट, इसको कविता में कैसे लाया जाए। एक नई जुबान दी उन्होंने।
यानी युद्ध की तबाही और ये जो बदलता हुआ समाज था, इसने एक नई तरह की कला को जन्म दिया, और एलियट उसमें एक बड़ी आवाज बनकर उभरे।
बिल्कुल।
उस वक्त उनके साथ और कौन बड़े नाम थे? किन लोगों का असर था उन पर?
देखिए, सबसे बड़ा नाम तो उनके दोस्त और मेंटर एज़रा पाउंड का लेना होगा। वो खुद भी बहुत बड़े कवि थे।
हाँ, पाउंड का जिक्र आता है।
पाउंड ने ही एलियट को पहचाना, प्रमोट किया, छपवाया। यहाँ तक कि उनकी सबसे मशहूर कविता है द वेस्ट लैंड, उसको एडिट करने में पाउंड का बहुत बड़ा हाथ था।
अच्छा।
और फिर जेम्स जॉयस थे, वर्जीनिया वुल्फ थी, W.B. Yeats थे, ये सब उसी दौर के बड़े लेखक थे। और साथ ही विचारों की दुनिया में भी बहुत कुछ चल रहा था। फ्रॉइड के सिद्धांत आ रहे थे अचेतन मन के बारे में।
हाँ, मनोविज्ञान।
जेम्स फ्रेजर मिथकों पर लिख रहे थे, बर्गसन समय और चेतना पर। तो एक तरह का बौद्धिक उबाल था। और इसी माहौल में एलियट की कविता, जो बिखरी हुई लगती थी, जो मुश्किल लगती थी, वो जरूरी महसूस होने लगी।
चलिए, थोड़ा उनके बचपन और शुरुआती पढ़ाई लिखाई पर आते हैं। सुना है काफी अच्छे प्रतिष्ठित परिवार से थे वो।
हाँ, परिवार काफी पुराना और सम्मानित था न्यू इंग्लैंड का। मतलब उनकी जड़ें उन शुरुआती प्योरिटन लोगों तक जाती थीं जो अमेरिका में बसे थे।
अच्छा।
पिता बड़े बिजनेसमैन थे, माँ खुद कवित्री और सोशल वर्कर थीं। लेकिन एलियट बचपन में थोड़े अलग थलग रहते थे। उनको जन्म से ही हर्निया था, तो ज्यादा खेलकूद नहीं सकते थे। तो बस किताबों में मन लग गया। और सेंट लुइस शहर का जो माहौल था, वो मिसिसिपी नदी, इसका उनकी कल्पना पर बहुत गहरा असर पड़ा।
और पढ़ाई, हार्वर्ड का नाम तो बहुत सुना है, उनके साथ जुड़ा हुआ है।
हाँ बिल्कुल, हार्वर्ड गए, वहाँ फिलॉसफी पढ़ी, संस्कृत भी पढ़ी।
संस्कृत, अच्छा।
हाँ, और दांते जैसे कवियों को भी पढ़ा। और यहीं हार्वर्ड में ही उन्हें फ्रेंच कवि लफॉग की कविताएं मिली, जिनका असर उनकी शुरुआती कविताओं पर आप साफ देख सकते हैं। बाद में वो पेरिस भी गए, सॉर्बोन में, फिर ऑक्सफोर्ड भी गए। और एक दिलचस्प बात ये है कि उन्होंने ब्रिटिश दार्शनिक थे F.H. ब्रैडली उन पर डॉक्टरेट की थीसिस भी लिखी,
हाँ,
लेकिन कभी जमा नहीं की।
अरे क्यों?
शायद उन्हें एकेडमिक दुनिया से ज्यादा खिंचाव क्रिएटिव राइटिंग की तरफ महसूस हो रहा था। वो रास्ता उन्हें ज्यादा बुला रहा था।
ये तो दिलचस्प है। तो फिर उनकी लेखन की क्या खासियत थी, मतलब कैसे उन्होंने कविता को बदला? आपने कहा बिखराव, टूट फूट।
हाँ, उन्होंने इसी बिखराव को आधुनिक मन की जो उलझन थी उसे दिखाने के लिए नई टेक्निक्स अपनाई। जैसे उनकी कविताओं में आप देखेंगे, अचानक से सीन बदल जाता है,
हाँ,
अलग अलग लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं, कभी किसी पुरानी कहानी का जिक्र आ जाता है, कभी किसी दूसरी कविता की लाइन। इसे फ्रैगमेंटेशन कहते हैं, मतलब टुकड़ों में चीजें दिखाना,
अच्छा,
और जक्स्टापोजिशन यानी दो अलग अलग चीजों को एकदम पास पास रख देना ताकि एक नया, अक्सर चौंकाने वाला मतलब निकले। ये सब तरीके थे उस वक्त की बेचैनी को पकड़ने के।
और उनका वो सिद्धांत भी तो था, अव्यक्तिक कविता या इम्पर्सनल पोएट्री। ये थोड़ा समझने में मुश्किल लगता है, मतलब क्या कवि अपनी फीलिंग्स नहीं लिखता?
ये उनका बहुत ही, कह सकते हैं, क्रांतिकारी आइडिया था। उन्होंने एक निबंध लिखा था, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। उसमें उन्होंने कहा कि कवि जो है वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स जाहिर करने का जरिया नहीं है, वो तो एक कैटलिस्ट जैसा है।
कैटलिस्ट, उत्प्रेरक।
हाँ, उत्प्रेरक, जो परंपरा से, अपने अनुभवों से चीजें लेता है और कुछ नया बना देता है। कविता असल में भावनाओं से भागना है, अपने व्यक्तित्व से भागना है। मतलब जोर कवि पर नहीं, आर्ट पर, कविता पर होना चाहिए।
अच्छा, तो मतलब कवि का काम अपनी भावनाएं उड़ेलना नहीं, बल्कि उन्हें एक शक्ल देना है, एक कलात्मक रूप देना है। और इसी से जुड़ा वो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव वाला आइडिया था, वस्तुनिष्ठ संबंध।
हाँ बिल्कुल, वो इसी से जुड़ा था। इसका मतलब था कि किसी भावना को सीधे सीधे मत कहो। मैं उदास हूं कहने की बजाय जैसे कुछ ऐसी चीजें दिखाओ, कोई ऐसी सिचुएशन बनाओ, ऐसी घटनाओं का जिक्र करो कि पढ़ने वाले के मन में वो उदासी खुद ब खुद पैदा हो जाए।
जैसे कोई उदाहरण?
जैसे किसी वीरान सड़क का वर्णन करना, या शाम के धुंधलके का, या कोई मुरझाया हुआ फूल। मतलब शब्दों से एक तस्वीर बनाना जो भावना जगाए, ये ज्यादा असरदार तरीका है।
ये तो दिलचस्प है। और कौन से विषय थे जिन पर वो बार बार लिखते थे? उनकी कविताओं के केंद्र में क्या रहता था?
देखिए, उनकी सबसे बड़ी चिंता थी आधुनिक दुनिया का आध्यात्मिक खालीपन, स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस।
आध्यात्मिक खालीपन,
हाँ, मतलब धर्म से, परंपरा से लोग कटते जा रहे थे, तो एक तरह का अकेलापन, एक बिखराव आ गया था। संस्कृति टूट रही थी, और इस टूट फूट के बीच कहीं कोई मतलब खोजना, ये उनकी कविताओं का सेंट्रल थीम था।
और एक आलोचक के तौर पर भी वो बहुत माने जाते थे। उन्होंने किन लेखकों को, कह सकते हैं, दोबारा महत्व दिया?
वो फिर से अहमियत दिलाई। उन्हें डन की कविताओं में जो बौद्धिकता थी, विचारों की गहराई थी, वो पसंद थी। और वहीं दूसरी तरफ मिल्टन की या रोमांटिक कवियों की उन्होंने आलोचना की।
अच्छा, क्यों?
उनका मानना था कि कविता में सिर्फ भावना नहीं, बल्कि बुद्धि, इंटेलेक्ट और एक ऐतिहासिक समझ, हिस्टोरिकल सेंस भी जरूरी है। और परंपरा को उन्होंने कोई मरी हुई चीज नहीं माना। उन्होंने कहा, परंपरा तो एक जीवित चीज है जो हर नई अच्छी रचना के आने से थोड़ी बदल जाती है, थोड़ी और बड़ी हो जाती है।
ये बहुत गहरा विचार है। तो चलिए अब उनकी कुछ बड़ी मुख्य रचनाओं की बात करते हैं। शुरुआत प्रूफ रॉक से हुई थी।
हाँ, 1917 में उनका पहला कलेक्शन आया, प्रूफ रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस, और उसकी जो टाइटल पोएम है, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ रॉक।
हाँ, वो तो बहुत मशहूर है।
वो तो जैसे एक एंथम बन गई। आधुनिक इंसान का डर, उसका संकोच, उसका अकेलापन, वो प्रूफ रॉक जो है वो कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पाता। उसे लगता है उसकी जिंदगी बेकार की छोटी छोटी चीजों में बीत रही है। उसकी वो लाइन है ना, मैंने अपना जीवन कॉफी के चमचों से नापा है।
I have measured out my life with coffee spoons. कितनी जानी पहचानी लगती है ये भावना।
बिल्कुल। और फिर 1922 में आई द वेस्टलैंड, बंजर भूमि, जिसे अक्सर उनकी सबसे बड़ी, सबसे अहम रचना माना जाता है।
हाँ, द वेस्टलैंड।
जी।
ये किस बारे में थी? इसे समझना तो काफी मुश्किल बताते हैं लोग।
मुश्किल तो है। द वेस्टलैंड बेसिकली पहले विश्व युद्ध के बाद का जो यूरोप था, उसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक बंजरता का एक नक्शा है।
बंजरता का नक्शा?
हाँ
हाँ।
इसमें बहुत सारी आवाजें हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, पुराने मिथकों के हवाले हैं, रोज की बातचीत के टुकड़े हैं, सब एक कोलाज की तरह है।
कोलाज जैसा।
हाँ,
ये कविता बिखरी हुई लगती है, कन्फ्यूजिंग लगती है, लेकिन असल में ये उस वक्त की टूटी हुई बिखरी हुई दुनिया का ही अक्स थी और एज्रा पाउंड ने इसे एडिट करके काफी छोटा और कसावा बना दिया था।
अच्छा, पाउंड का रोल यहाँ भी था।
हाँ, बहुत बड़ा रोल था। इसका जो मूल भाव है वो है इन सांस्कृतिक खंडरों के बीच किसी तरह के पुनर्जन्म की, किसी उद्धार की तलाश।
तो ये जो बिखराव और निराशा है, क्या इसके बाद उनके लेखन में कोई मोड़ आया, कोई बदलाव?
हाँ, एक बहुत बड़ा मोड़ आया। 1927 में उन्होंने एंग्लो कैथोलिक धर्म अपना लिया, ईसाई बन गए वो।
अच्छा।
इससे ठीक पहले उन्होंने कविता लिखी थी द हॉलो मैन 1925, खोखले आदमी। उसमें ये अध्यात्मिक खालीपन अपने चरम पर है। उसकी आखिरी लाइनें बहुत मशहूर हैं कि दुनिया एक धमाके से नहीं।
हाँ, नॉट विद अ बैंग बट अ विम्पर, एक सिसकी के साथ। बिल्कुल।
लेकिन जब उन्होंने धर्म अपना लिया उसके बाद 1930 में आई एश वेंसडे। इसमें शक से आस्था की तरफ जाने का एक मुश्किल सफर दिखता है। भाषा थोड़ी शांत हो जाती है, ज्यादा मेडिटेटिव, ध्यानमग्न।
और फिर फोर क्वार्टेट्स, कहते हैं ये उनका शिखर है।
निश्चित रूप से। फोर क्वार्टेट्स 1943 में आए। ये चार लंबी कविताएं हैं जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लिखी गईं। इसमें समय, यादें, इतिहास, आध्यात्मिकता, ऐसे बहुत गहरे विषयों पर चिंतन है। यहाँ वो पहले वाला बिखराव नहीं है, यहाँ एक शांति है, एक गहरी सोच है, एक लय है। भाषा बहुत सुंदर और दार्शनिक है। कई लोग मानते हैं कि ये अंग्रेजी में शायद सबसे अच्छी धार्मिक कविता है 17वीं सदी के बाद की।
कविता के अलावा उन्होंने नाटक भी लिखे हैं ना?
हाँ, उन्होंने पद्य नाटक मतलब वर्स ड्रामा को दोबारा जिंदा करने की कोशिश की। उनका सबसे सफल नाटक रहा मर्डर इन द कैथेड्रल 1935।
तो ये किस बारे में था?
ये कैंटरबरी के आर्च बिशप थॉमस बेकेट की शहादत की कहानी है। इसमें धर्म और दुनियावी सत्ता के बीच का जो टकराव है उसका बहुत जबरदस्त चित्रण है। उन्होंने कुछ और नाटक भी लिखे। उनकी कोशिश थी कि कविता को थिएटर के जरिए आम लोगों तक पहुंचाया जाए।
ये तो उनके काम की बात हुई, उनके निजी जीवन में भी तो काफी उथल पुथल रही। उनकी पहली शादी का जिक्र अक्सर दुखद रूप में होता है।
हाँ, वो वाकई बहुत दुखद कहानी है। 1915 में उन्होंने विवियन हेगवुड से शादी की, लेकिन विवियन की सेहत, मानसिक और शारीरिक दोनों, अक्सर बहुत खराब रहती थी और ये रिश्ता दोनों के लिए ही बहुत तनाव और दुख का कारण बना।
ओह।
माना जाता है कि ये जो निजी तकलीफ थी इसका असर एलियट की कविताओं पर भी पड़ा, खासतौर पर द वेस्टलैंड में जो बेचैनी है, जो दर्द की तस्वीरें हैं। बाद में विवियन की हालत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें मानसिक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और वहीं उनकी मौत हुई। ये एलियट के लिए जिंदगी भर एक अपराध बोध, एक गिल्ट का सबब रहा।
ये तो बहुत दुख की बात है। और ये भी सुना है कि शुरुआत में उन्हें लिखने के साथ साथ नौकरी भी करनी पड़ी थी, बैंक में।
हाँ बिल्कुल, अपना खर्चा चलाने के लिए पहले उन्होंने स्कूल में पढ़ाया, फिर लंदन में लॉयड्स बैंक में क्लर्क का काम किया 1917 से 25 तक।
बैंक में क्लर्क?
हाँ, काम तो शायद बोरिंग था, लेकिन इसने उन्हें शहर की जो आपाधापी है, दफ्तरों का जो खोखलापन है, उसका सीधा अनुभव दिया और ये चीजें उनकी कविताओं में आती हैं।
वो शहरी माहौल।
हाँ, बाद में 1925 में वो फेबर एंड फेबर पब्लिशिंग हाउस से जुड़ गए। वहां वो एडिटर बने, फिर डायरेक्टर, और बहुत प्रभावशाली भूमिका निभाई उन्होंने, कई नए लेखकों को मौका दिया।
ये दिलचस्प है कि कैसे उनके निजी अनुभव, उनकी नौकरी, ये सब उनके काम में कहीं ना कहीं झलकते हैं। और उनका इंग्लैंड में ही बस जाना, फिर ब्रिटिश नागरिक बन जाना, ये भी बड़े फैसले थे।
हाँ, 1927 में जब उन्होंने धर्म बदला, उसी साल ब्रिटिश नागरिकता भी ले ली। ये उनकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद उनके लेखन में परंपरा, व्यवस्था, इन चीजों पर ज्यादा जोर दिखता है। हालांकि जिंदगी के आखिरी सालों में उन्हें थोड़ी खुशी, थोड़ा सुकून मिला। 68 साल की उम्र में उन्होंने अपनी सेक्रेटरी थी वैलरी फ्लेचर, उनसे दूसरी शादी की और ये शादी काफी अच्छी रही। 1965 में लंदन में उनका निधन हुआ।
समय के साथ लोग उनकी विरासत को, उनकी लेगेसी को कैसे देखते आए? क्या वो हमेशा से इतने ही मतलब पूजनीय रहे हैं?
देखिए, अपने जीते जी और उसके बाद कई दशकों तक वो अंग्रेजी साहित्य के सबसे बड़े, सबसे प्रभावशाली नामों में से एक थे। एक पूरा क्रिटिकल स्कूल था, न्यू क्रिटिसिज्म, वो तो जैसे उन्हीं के विचारों पर आधारित था।
हाँ।
लेकिन बाद में, कह सकते 20वीं सदी के आखिरी हिस्से में, उनकी विरासत पर सवाल भी उठाए गए।
अच्छा।
किस तरह के सवाल?
जी,
कुछ आलोचकों ने, जैसे फेमिनिस्ट क्रिटिक्स ने, पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक्स ने, उनके जो कंजर्वेटिव विचार थे, उनका जो एक तरह का सामाजिक अभिजात्यपन था,
एलिटिज्म,
हाँ एलिटिज्म, और उनके कुछ लेखन या चिट्ठियों में कथित तौर पर यहूदी विरोध या स्त्री द्वेष के जो उदाहरण मिले, उनकी आलोचना की, तो अब उनकी छवि थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी विवादित भी है।
लेकिन इन विवादों के बाद भी उनकी रचनाएं तो आज भी पढ़ी जाती हैं, उनका महत्व तो कम नहीं हुआ।
नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी जो बड़ी रचनाएं हैं, खासतौर पर द वेस्टलैंड और फोर क्वार्टेट्स, वो आज भी मॉडर्निज्म को और 20वीं सदी की जो आध्यात्मिक चिंताएं थीं, उन्हें समझने के लिए जरूरी हैं।
हाँ।
और उनकी भाषा की ताकत देखिए, कितने सारे फ्रेज, कितने वाक्य उनकी कविताओं से निकलकर आम बोलचाल का हिस्सा बन गए।
हाँ, जैसे वो अप्रैल सबसे बेरहम महीना है।
बिल्कुल। या दुनिया ऐसे खत्म होती है एक सिसकी के साथ, या वो प्रूफ फ्रॉक की लाइन, मैंने अपना जीवन कॉफी के चमचों से नापा है, ये सब हमारी भाषा में रच बस गए हैं।
ये बात तो है। और उनके काम पर आधारित कुछ और चीजें भी बनी हैं। वो बिल्लियों वाला म्यूजिकल शो बहुत चला था।
हाँ, वो बड़ा ही मजेदार किस्सा है। एंड्रू लॉयड वेबर ने एलियट की एक किताब थी, थोड़ी हल्की फुल्की कविताओं की, ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स।
अच्छा।
उस पर एक म्यूजिकल बनाया कैट्स 1981 में, और वो दुनिया भर में जबरदस्त हिट हुआ।
हाँ, मैंने सुना है।
इसने एलियट का नाम उन लोगों तक भी पहुंचा दिया जो शायद उनकी गंभीर मुश्किल कविताएं कभी नहीं पढ़ते। एक तरह का पैराडॉक्स ही था कि इतने गंभीर इंटेलेक्चुअल कवि की कविताओं पर इतना पॉपुलर शो बन गया।
हाँ, ये तो है। हालांकि 2019 में जो फिल्म बनी थी वो नहीं चली।
हाँ, वो फिल्म तो नहीं चली। दूसरी तरफ उनका जो नाटक था मर्डर इन द कैथीड्रल, उस पर 1951 में एक फिल्म बनी थी जो काफी अच्छी मानी जाती है, और उनकी कविताओं का असर आप फिल्मों में भी देख सकते हैं, जैसे फ्रांसिस फोर्ड कोपोला की फिल्म है एपोकलिप्स नाउ।
हाँ, उसमें भी कहते हैं एलियट का प्रभाव है।
हाँ, उसमें है।
तो आज के समय में एलियट हमारे लिए क्यों जरूरी है? आज के पाठक को उन्हें क्यों पढ़ना चाहिए?
मेरे ख्याल से इसलिए जरूरी है क्योंकि जिन सवालों से वो उस वक्त जूझ रहे थे, वो सवाल आज भी हमारे सामने हैं, शायद और भी ज्यादा बड़े रूप में।
जैसे?
जैसे शहर में अकेलापन, अर्बन एलिनेशन, आस्था का संकट, फेथ क्राइसिस, संस्कृति का बिखराव, कल्चरल फ्रेगमेंटेशन, जिंदगी में मतलब की तलाश, ये सब चीजें आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं। और उनकी जो तकनीकें थीं, भाषा का जैसा इस्तेमाल उन्होंने किया, वो आज भी कवियों को, लेखकों को सिखाता है कि कैसे अपनी बात को नए और असरदार तरीके से कहा जाए। वो हमें अपनी दुनिया की जो जटिलताएं हैं उन्हें ज्यादा गहराई से देखने पर मजबूर करते हैं।
चलिए, उनकी कुछ मशहूर पंक्तियों को उनके मतलब के साथ एक बार फिर याद कर लेते हैं। मैंने अपना जीवन कॉफी के चमचों से नापा है, प्रूफ रॉक। ये दिखाता है कि कैसे जिंदगी छोटी छोटी बेमतलब की चीजों में रूटीन में खर्च हो जाती है।
बिल्कुल।
और अप्रैल सबसे क्रूर महीना है, मृत भूमि से लाइलैक उगाता है, द वेस्टलैंड।
बिल्कुल।
मतलब वसंत जो उम्मीद लाता है वो यहाँ दर्द भरी यादें जगा रहा है, क्योंकि जमीन तो बंजर है, उसमें जान नहीं है।
ये टुकड़े मैंने अपने खंडहरों के सहारे रखे हैं, द वेस्टलैंड। ये जैसे उस टूटी हुई संस्कृति के मलबे से कुछ नया बनाने की, कुछ जोड़ने की कोशिश है जो मॉडर्निस्ट आर्ट का एक अहम हिस्सा था। हाँ,
हाँ।
और दुनिया का अंत इस तरह होता है, धमाके से नहीं बल्कि एक सिसकी के साथ, द हॉलो मैन। ये आध्यात्मिक थकान, वो जो अंदर का खोखलापन है, उसकी निराशाजनक तस्वीर है।
और वो आलोचना वाली बात, कविता भावनाओं की मुक्ति नहीं बल्कि भावनाओं से पलायन है, यानी कला जो है वो सिर्फ पर्सनल फीलिंग जाहिर करने से बड़ी चीज है।
सही। और फोर क्वार्टर्स से वो पंक्ति, मेरे आरंभ में ही मेरा अंत है, ये समय का, जीवन का, अनंत काल का जो एक चक्रीय नजरिया है, उसकी गहरी समझ दिखाती है।
और एक बात जो उन्होंने कही थी मुझे याद आ रही है कि वास्तविक कविता समझने से पहले संवाद कर सकती है। मतलब कविता का असर सिर्फ बुद्धि पर नहीं होता।
बिल्कुल। वो सीधे आपके एहसास को छूती है, अपनी आवाज से, अपनी लय से, इससे पहले कि आप उसका मतलब समझे वो आपसे जुड़ जाती है।
हाँ।
तो देखिए, एलियट ने आधुनिक जीवन की जो टूट फूट थी उसका सामना किया, और उन्होंने परंपरा में, आस्था में और खुद कला में एक सहारा, एक ढांचा खोजने की कोशिश की। उनका काम आज भी हमसे यही सवाल पूछता है शायद, कि इस बिखरी हुई दुनिया में हम चीजों को कैसे समेटें, मतलब कहाँ खोजें, अपने अतीत से कैसे जुड़ें और आने वाले कल का सामना कैसे करें। शायद उनकी जो स्थायी शक्ति है वो सिर्फ उनके दिए जवाबों में नहीं है, बल्कि इन जरूरी सवालों को इतनी गहराई से, इतने असरदार ढंग से पूछने में है।
ये बहुत अच्छी बात कही आपने, सोचने पर मजबूर करती है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए कलेक्टर फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।